नमस्कार, स्पोर्ट्स ज्ञान में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। आज के इस एडिशन में हम तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स ज्ञान में आपका स्वागत है।
धन्यवाद मुदिता।
तो सचिन, खेलों का महाकुंभ पेरिस ओलंपिक अभी खत्म हुआ है और अभी भी हर तरफ हमारे मेडल विनर्स को सम्मानित किए जाने की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं, खबरें आ ही रही हैं, वो सिलसिला अभी जारी है। और वहीं दूसरी ओर अब 28 से पैरालंपिक शुरू हो जाएगा।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए ये दोनों ही इवेंट एक ही जगह पे होती हैं
जी,
और बहुत महत्वपूर्ण भी है और खासतौर से जो खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं इस बार काफी उत्साहित हैं और काफी बड़ा दल भी हमारा जा रहा है मुद्दा इस बार।
जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा कल से दिल्ली प्रीमियर लीग का पहला सीजन भी शुरू होने वाला है। तो इस पर और बाकी सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में सुमित अंचल और भाग्यश्री जाधव भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल का पहला सीजन कल से शुरू होगा। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ए को 8 विकेट से हराया, श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। और भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एपडिन सिनसिनाटी ओपन से बाहर हो गए हैं। तो पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंचल और गोला फेंक एथलीट भाग्यश्री जाधव भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय दल के विदाई समारोह में आज इसकी घोषणा की गई। समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा।
आप में से कई प्लेयर खेलो इंडिया से निकले हैं, तकरीबन 50 ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप स्कीम के लाभार्थी रहे हैं। आपको आपके जीवन में कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो या बेस्ट कोच रखना हो या जो भी संसाधन की आपको आवश्यकता रही और टॉप के द्वारा आपको उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है।
हम श्रोताओं को बता दें सचिन की पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में होगा, जिसमें भारत के 84 खिलाड़ी भाग लेंगे और ये पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। पिछले हमारा जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें 54 एथलीट्स थे जिन्होंने भाग लिया था। और आज इस इवेंट में हमारे संवाददाता ने पैरालंपिक खेलों में भाग ले रहे कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जिन्होंने अच्छा खेलने और देश के लिए पदक जीतने का भरोसा व्यक्त किया है।
मेरा नाम अशोक मलिक है और मेरा गेम है पैरा पावर लिफ्टिंग। टॉप स्कीम से मैं 3-4 महीने से हूँ और जो कि मेरे को बहुत अच्छे से बेनिफिट मिल रहा है। टाइम टू टाइम मेरे को जो चीजों की रिक्वायरमेंट डाली थी मैंने वो टाइम टू टाइम मेरे को मिल रही है।
मैं कंचन लखानी इंटरनेशनल पैरा एथलीट और मैं जा रही हूँ पेरिस 2024 में पैरालंपिक्स में। अब डिस्कस करूँ तो बताना चाहूंगी कि पैरालंपिक्स गेम की तैयारी कुछ दिनों की या महीनों की नहीं होती है, सालों की खिलाड़ी की मेहनत होती है। वो सालों की मेहनत और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हम आज पैरालंपिक के मुकाम तक पहुंचे हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं।
तो सचिन, टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट 19 मेडल आए थे जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक हमने जीते थे। इस बार 84 खिलाड़ियों का दल है, क्या लगता है?
लक्ष्य भी बड़ा रखा है
जी।
देवेंद्र झाझरिया जी ने खुद ही बोला है
जी
कि इस बार हम 25 पदक की उम्मीद के साथ जा रहे हैं क्योंकि हमारा दल भी बड़ा है। और चूंकि जिस तरह से पिछली बार प्रदर्शन रहा था मुद्दा, उसको देखते हुए कोई ये बहुत असंभव काम भी नहीं लग रहा है क्योंकि 19 पदक हमने जीते ही थे, सिर्फ हम 25 की इस बार जो है लक्ष्य बना के जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार भी हैं। और देवेंद्र खुद 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, पिछली बार टोक्यो में भी वो
जी जावलिन में सिल्वर
है, सिल्वर उन्होंने लाया था। इसके अलावा बस एक खिलाड़ी जो हमारे प्रमोद भगत हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है वेयर अबाउट क्लॉज की वजह से,
और गोल्ड विनर थे वो हमारे पिछले बार के।
ये एक थोड़ा सा एक झटका है क्योंकि गोल्ड हमारे पांच ही थे पिछली बार, तो निश्चित तौर पर ये टीम के लिए एक झटका हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो उनकी कमी को पूरा करेंगे, उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।
बिल्कुल।
और देखिए पदक का जहां तक ये जो जीतने का सिलसिला है ये पिछले कुछ ही सालों में ज्यादा पदक हम इसमें जीत पाने में सफल हो रहे हैं। और इसमें बड़ी दिलचस्प एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीकांत पेटकर जिनपे अभी फिल्म बनी है चंदू चैंपियन, वो इन खेलों के पहले पदक विजेता थे भारत के लिए, जो स्विमिंग में 1972 में स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेके आए थे रिकॉर्ड बना के। तो उन्हीं पे वो फिल्म भी आई है, मुझे लगता है बहुत से हमारे श्रोताओं ने वो फिल्म देखी होगी और उनसे जो है उनके जो जीवन है उससे प्रभावित हुए होंगे कि किस तरीके से वो पहले सैनिक थे, सैनिक होने के बाद जब वो चोटिल हो गए तो किस तरह से उन्होंने खेल को अपना करियर बनाया और उसमें इस मुकाम तक पहुंचे कि भारत को उन्होंने शिखर पे पहुंचाया। फिर हम पदक जीतते रहे लेकिन इक्का दुक्का 84 के बाद 2004 तक काफी एक लंबा गैप हो गया जब हमने ज्यादा पदक नहीं जीते। लेकिन 2004 के बाद एथेंस के बाद जिसमें देवेंद्र खुद पार्टिसिपेट करे उन्होंने किया था और गोल्ड भी जीता था, उसके बाद से फिर हमारा जो प्रदर्शन है धीमे धीमे काफी अच्छा होता चला
जी
गया।
बिल्कुल। और पिछले ओलंपिक में तो जी बिल्कुल, जैसे ओलंपिक में शूटिंग में इस बार हमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, पिछली बार पैरालंपिक में भी शूटिंग में ही सबसे ज्यादा हमें मेडल्स दिलवाए थे, 5 मेडल्स हमें, जिसमें 2 गोल्ड भी शामिल थे, एक अवनी लेखरा का और दूसरा मनीष नरवाल का गोल्ड भी उसमें शामिल था। तो इस बार भी क्या शूटिंग से
शूटिंग में देखिए जो जा रहे हैं निश्चित तौर पर वो सभी पदक के दावेदार हैं और अवनी खुद भी हैं टीम में, और मुझे लगता है कि देवेंद्र ने एक चीज की तरफ जरूर इशारा किया है कि इस बार एथलीट जाता जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि एथलेटिक्स में चूंकि इवेंट्स भी बहुत होती हैं और उसमें ज्यादा पदक की उम्मीद है, और वो उनका मानना यही है कि जैसे मैं यहां कह रहा हूं कि भाई सभी हमारे पदक के ही दावेदार हैं और जो हमारे जो वहां फ्लैग बेयरर्स जो बनाए गए हैं वो भी एथलीट ही हैं दोनों
जी।
और वो लोग भी पिछली बार के अच्छे खिलाड़ी हैं, एक तो चैंपियन ही रहे हैं।
जी बिल्कुल। तो हम श्रोताओं को बता दें कि पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज्यादा पदक हमने शूटिंग में जीते थे, 5 पदक थे जिसमें 2 गोल्ड भी शामिल थे। इसके अलावा बैडमिंटन और हाई जंप में हमने 4-4 पदक जीते थे, बैडमिंटन में भी 2 गोल्ड थे, प्रमोद भगत का जैसा आपने बताया अभी और दूसरा कृष्णा नागर का भी उसमें था। हाई जंप में 4 पदक थे हालांकि गोल्ड नहीं था उसमें, और जैवलिन में हमने 3 पदक जीते थे, और टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो और आर्चरी में हमने एक पदक, वहां पर तीरंदाजी में एक पदक हासिल किया था। तो अब हम चलते हैं दूसरा जो हमारा शुरू हो रही है कल से, दिल्ली की T20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग दिल्ली प्रीमियर लीग DPL का पहला सीजन कल से शुरू होगा। आइए सुनते हैं आकर्षिता की रिपोर्ट। दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में पुरुष वर्ग में 6 टीमें और महिला वर्ग में 4 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में 40 मैच होंगे जिनमें 33 मैच पुरुष और 7 मैच महिला टीमों के बीच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 8 सितंबर को होगा। पहला मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात 8:30 बजे पुरानी दिल्ली 6 और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला जाएगा। पुरानी दिल्ली 6 की टीम में ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा भी शामिल हैं। पुरुष वर्ग में भाग लेने वाली 4 अन्य टीमें हैं पूर्वी दिल्ली राइडर्स, सेंट्रल दिल्ली किंग्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस। वहीं महिला वर्ग की 4 टीमें हैं साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, सेंट्रल दिल्ली क्वींस, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
देखिए ये टूर्नामेंट जो है जो दिल्ली के खासतौर से खिलाड़ी हैं और जो हमारे इर्द गिर्द के भी खिलाड़ी हैं उन सबके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से IPL में खिलाड़ियों की खोज होती है तो जो अगर इस तरह की कोई लीग रहेगी जो एक कैचमेंट एरिया के आसपास की है तो उसी उस टीम को बहुत फायदा होगा। टीमों के लिए जब सुनते हैं ना कि वो तमिलनाडु लीग से वो खिलाड़ी आया है, जब अचानक से कोई बढ़िया प्रदर्शन करता है IPL में तो जब हम उसके पुराने प्रदर्शन पे नजर डालते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये तो तमिलनाडु लीग के हैं, ये कर्नाटका लीग से निकले हैं या ये बम्बई की लीग से निकले हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक कमी थी तो उसको जो है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जिसको हम DDCA बोलते हैं, जो यहाँ के क्रिकेट को चलाती है, उसने इसको पूरा करने की जो कोशिश की है वो बहुत अच्छा प्रयास है। और यहाँ और सबसे अच्छी बात है कि महिला टीमों को भी उन्होंने मौका दिया।
जी बिल्कुल,
हालांकि ये दीगर बात है कि अभी उनके मैचेस कम हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि
सारी टीमें भी कम है, अभी चार हैं महिलाओं में,
पुरुषों के मैच ज्यादा है, चार टोटल मैच, लेकिन ठीक है, मतलब एक प्रयास है, शुरुआत है, बिल्कुल एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि महिलाओं को भी कम से कम वो उस मानचित्र पे लेके आ रहे हैं जहां से उनको आगे की मौका मिल सके।
बिल्कुल, और आपने बात की महिला क्रिकेट की तो एक खबर हमारे पास है, महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ए को 8 विकेट से हरा दिया है। सलामी बल्लेबाज मैडी डाके के अर्धशतक और शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने पहला मैच 4 विकेट से जीता था। और अब हम चलते हैं टेनिस की ओर। अच्छी खबरें नहीं हैं थोड़ा। आज भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन सिनसिनाटी ओपन से बाहर हो गए हैं। राउंड ऑफ 16 में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी को फ्रांस के आर्थर फिल्स और चिली के निकोलस जेरी की जोड़ी से 4-6, 7-6, 8-10 से हार का सामना करना पड़ा। पहला सेट हारे, दूसरा जीते और तीसरा हार गए। जी,
कुछ दिनों से इनका जो है प्रदर्शन थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा मिला जुला ही चल रहा है। ओलंपिक में भी जितनी हम लोग उम्मीद
थी तो शायद था कि नए जोड़ीदार के साथ उन्होंने खेला, शायद
इसका फर्क पड़ता है। हालांकि एक टूर्नामेंट उन्होंने उससे पहले खेला था अभ्यास के तौर पर, लेकिन वो सिर्फ एक टूर्नामेंट था, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि उस तरीके से जो एक तालमेल होना चाहिए दो जोड़ीदारों के बीच में उस तरह से नहीं था। लेकिन एबडन के साथ तो इन्होंने साल का पहला ग्रैंड स्लैम जीता था रोहन बोपन्ना ने, और वो एक रिकॉर्ड था जो सबसे ज्यादा उम्र के वो खिलाड़ी बने थे इस तरीके की उपलब्धि हासिल करने वाले। उसके बाद कई टूर्नामेंट्स में अच्छा रहा, लेकिन अब कुछ दिनों से जोड़ी फिर से मुझे लग रहा है कि संघर्ष कर रही है उस अपने उस प्रदर्शन को पाने के लिए। और अगला टूर्नामेंट जो कि यूएस ओपन है तो उससे पहले
यही एक मौका था।
जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूएस ओपन में आएंगे तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिले।
और वहीं कल हमारे उभरते हुए टेनिस स्टार मानस धामने ने, जिन्होंने कल अपने प्रदर्शन से चौंकाया था सबको, वो आज ITF F13 टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में इलियास नदारी से 7-5, 1-6, 4-6 से हारकर बाहर हो गए हैं। हम श्रोताओं को बता दें कि धामने केवल 16 साल के हैं और कल उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त रोमानिया के निकोलस डेविड एनेल को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। तो शायद आने वाले समय के हमारे
एक नए मतलब एक खिलाड़ी
हमें नजर बनाए रखनी चाहिए,
क्योंकि देखिए अभी भारतीय टेनिस में बहुत एक कह सकते हैं अब एक वैक्यूम आ गया है कि जो पुराने हमारे खिलाड़ी थे वो धीमे धीमे उम्र बढ़ी और वो रिटायर
होने से खिलाड़ियों पर भी प्रेशर थोड़ा कम रहता है। अगर हमारे
हाँ बिल्कुल, अब देखिए डेविस कप टीम में अब किसी से आप कहिए तो लोग कहेंगे कि हम तो खिलाड़ियों के नाम ही नहीं जानते, क्योंकि वो एकदम जो खिलाड़ी हैं वो जो बहुत ही कम नाम वाले हैं। तो अगर कोई हमारे पास अच्छे खिलाड़ी आते हैं तो जरूर जगह है, क्योंकि आप किसी भी खेल में देख लीजिए अच्छे खिलाड़ियों की हमेशा गुंजाइश होती है।
जी बिल्कुल। और वहीं भारतीय फुटबॉल अंडर 17 टीम सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप और AFC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर की तैयारियों के लिए इस महीने के अंत में इंडोनेशिया के खिलाफ 2 मैत्री मैच खेलेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने आज इसकी घोषणा की है। और आज नीरज चोपड़ा और बोमन देवरा धीराज को थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मानित किया है। इसके साथ ही उन्होंने सेना के अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने भाग लिया था। और जनरल द्विवेदी ने कहा है कि खिलाड़ियों की उपलब्धि अन्य लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि सेना के खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो जो हम प्रोग्राम की शुरुआत में बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने का सिलसिला जारी है।
जी बिल्कुल, और अभी तो ये लौटे ही हैं तो इसलिए नीरज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले दिनों। और उनको लगातार जो है भले ही वो वहां पे गोल्ड मेडल से चूके हैं, लेकिन जो उनका कद है बतौर खिलाड़ी वो बहुत ऊंचा हो गया है।
उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो सिल्वर मेडल लोगों को हार की तरह लग रहा था काफी लोगों को।
जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए खेल है और अगर उसमें अशरफ नदीम ने ज्यादा अच्छा थ्रो किया तो वो उसके हकदार थे उस जीत के। उनका
नीरज का प्रदर्शन अच्छा था उस दिन,
इसमें कोई शक नहीं।
बिल्कुल, तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम खत्म करने से पहले हम सुमित नागल और लक्ष्य सेन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। इसी के साथ सचिन और मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।